السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاء اللہ تعالی اس رمضان میں ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم انبیاء کے قدموں پر چل کے دیکھیں گے, ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کن حالات سے گزرے, انہوں نے کن مصائب کا سامنا کیا اور ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری سوچ, ہمارا مصائب میں رویہ, ہماری ڈیلنگز, ہمارے کرنے کے کام کتنے فرق ہیں ان سے, ان کے کردار کی کوئی جھلک ہمارے اندر نظر آتی بھی ہے یا نہیں, جبکہ وہ انعمت علیہم تھے, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے انعام یافتہ لوگ. پھر اگر ہم بھی انعام یافتہ لوگوں کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے اور ہمارے راستے جدا نہیں ہونے چاہیے, ہمارے اور ان کے کردار میں اتنا بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. تو جہاں ہم کمپیریزن کریں گے اپنے حالات میں اور ان کے اوپر گزرنے والے واقعات میں, وہاں ہم بہت کچھ سیکھیں گے بھی ان کی زندگیوں سے. اس سیریز میں میں آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھوں گی جو میری آنکھوں کے سامنے سمجھ لیں کہ ایک فلم کی طرح چل رہے ہیں. ایک سیمولیٹر میں میں بیٹھی ہوئی ہوں جہاں پہ 3D افیکٹس ہیں اور میرے سامنے جو جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. اب میں جب آپ کو بتاؤں گی, وہ حالات دکھاؤں گی اپنی عینک سے, تو آپ اندازہ کر سکیں گے ان کی زندگیوں میں جھانک کر کہ ان پر کس کس وقت میں کیا کیا گزری. اور جتنا بھی کانٹینٹ اس کے لیے لیا گیا ہے سیریز کے لیے, بہت احتیاط کے ساتھ اوتھینٹک سورسز سے لیا گیا. تو چلتے ہیں آج کے سفر پر, اور یہ سفر ایک ایسے نبی کی زندگی کا ہے جو ایسے انوکھے حالات سے گزرے جن سے کبھی بھی کوئی انسان نہیں گزرا. بسم اللہ کرتے ہیں. میرے سامنے دنیا کا نقشہ ابھر آیا ہے اور عراق کا ایک شہر ہے موصل, اس پہ سرخ پن لگی ہوئی ہے. چلتے ہیں 800 BC میں, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 800 سال پہلے کا زمانہ. یہ وہ زمانہ ہے جس میں ایک ایسے پیغمبر آئے جن کا واقعہ بڑا انوکھا ہے. ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی کوئی اس واقعے کو سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جس میں ایک پیغمبر ایک ایسے امتحان سے گزرے جس امتحان سے کبھی کوئی انسان نہیں گزرا ہوگا. تو انہی کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. میرے سامنے तेजी से एक मंजर आ गया। 800 साल पहले ईसा अलैह सलाम से मोसल का एक बाजार। दिन खूब तेज है, लोग रोजमर्रा का सौदा सलफ ले रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी मसरूफियत में मगन है। लोगों का हाल हुलिया बता रहा है कि हजारों साल पुरानी कोई तहसीब है, मगर इसके बावजूद बहुत खूबसूरत लिबास, बहुत खूबसूरत चाल ढाल। यूं लगता है ये बड़े खुशहाल लोग हैं, और इस बाजार का समा एक मंडी का सा है, जिससे पता चलता है इनकी इकोनॉमी भी काफी अच्छी है, काम कारोबार खूब चल रहा है, गहमा गहमी है, दुकानें सजी हुई हैं। और इमारतें ऐसी खूबसूरत हैं जो सफेद पत्थरों से बनी हुई हैं। यूं लगता है किसी ने बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्चर किया है। सामने एक कुशादा सड़क है जिसके दोनों तरफ बाग हैं, फल पके हुए हैं। कोई अपने जमाने का बड़ा मॉडर्न शहर लग रहा है। खूबसूरत इमारतों के झुरमुट में एक ऊंची इमारत नजर आ रही है जो सब में नुमाया है। मैं तो समझती थी पुराने जमाने के लोग शायद भेड़ियों की खाल पहन के लंगोट बांधते हुए फिर रहे होंगे, मगर ये तो खासे अच्छे भले लोग हैं। मैं उस सड़क पर चल दी जहां पर वो आलीशान इमारत थी जिसपे झंडे लगे हुए थे। बहुत सारे लोग उस तरफ जा रहे थे, मैं भी उनके साथ इमारत में दाखिल हो गई। मगर ये क्या, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। एक बदनुमा तवील उल कामत बुत सामने रखा था, जिसके सामने जाके हर छोटा बड़ा झुक रहा था और सज्दे की पोजीशन में पीछे वापस आ रहा था। कई लोग हाथ बांधे अदब से खड़े थे और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते जा रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में ये पहली दफा देखा था बुत परस्ती कैसे होती है। उस बड़े बुत के साथ कुछ छोटे छोटे बुत भी थे, और इन सब के आगे खाने के और फूलों के थाल रखे हुए थे। कुछ कुछ देर बाद एक शख्स खड़ा होकर बुत के ऊपर पंखा जलता था, जैसे शायद मक्खियां उड़ाना चाह रहा हो या उसको गर्मी से बचाना चाह रहा है। मैं ये मंजर देख के हैरत जदा रह गई। ये तो अच्छे भले समझदार लोग लगते हैं। इनके बाजार से भी पता चलता है कि ये अच्छे खासे कामयाब लोग हैं। इनको तिजारत का हुनर भी आता है, खुशहाली भी यहां बहुत है। अगर फिर इतनी ना समझी, इनकी अकलों को क्या हो गया? ये खासे मालदार भी लगते हैं, मगर कौन कह सकता है कि इतनी आला तहजीब और तमद्दुन रखने वाले लोग इस कदर बेवकूफ हो सकते हैं और जहालत और शिर्क के अंधेरों में यूं डूबे हुए हो सकते हैं। मेरा दिल चाहा कि मैं इनको रोक दूं। क्या इनको यहां पे कोई रोकने वाला नहीं? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि एक खूबसूरत नौजवान इस मंदिर में दाखिल हुआ। उसको देखने से महसूस होता था कि ये कोई इंतहाई नेक और शरीफ आदमी है। आम नौजवानों की तरह उसमें ना कोई शोखी थी ना अकड़, बल्कि चेहरे से ही आजी सुकून ठहराव नजर आ रहा था। उसकी शख्सियत बहुत बावकार थी। इसके अंदर दाखिल होते ही जैसे लोगों के चेहरे बदल गए। वही लोग जो अभी अच्छे भले लग रहे थे, अब गुस्से और नफरत से उसकी तरफ देखकर घूरने लगे। यूं लगता था ये इस नौजवान को कच्चा चबा जाएंगे। ये भी पता चल रहा था इसको ये अच्छी तरह जानते हैं। अभी नौजवान ने कुछ कहा भी नहीं था। ये लोग इस कदर गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, इनको मसला क्या है? वो नौजवान ऊंची आवाज में लोगों से मुखातिब होके बोला, ए लोगों, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया, तुम बाज क्यों नहीं आते? ये बुत तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, ये तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक नहीं है। डरो अल्लाह से और बाज आ जाओ इस शिर्क से। मैं इस नौजवान की जुर्रत और बहादुरी पे हैरान हो गई। हम तो छोटे से मजमे में भी, अपनी दोस्तों की छोटी सी पार्टी में भी कोई गलत काम होते देखते थे तो कुछ बोलने की जुर्रत नहीं रखते थे कि कहीं सब हमारे पीछे ना पड़ जाए। और यहाँ ये अकेला नौजवान इतने सारे लोगों में यूं बेखौफ होके बड़ी जुर्रत के साथ इनको गलत कह रहा है, खास तौर पे जब ये लोग गुस्से से इसकी तरफ देख रहे हैं। मेरे दिल में इस नौजवान की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। ये भला कौन हो सकता है? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि एक बड़ा तनोमंद आदमी आगे बढ़ा और बोला, यूनुस, हम तुझे कह चुके हैं हमारे खुदाओं की पूजा से हमें मना ना कर, वरना अच्छा नहीं होगा। तू कौन होता है हमें मना करने वाला? इसकी बात अभी बीच में ही थी कि दो तीन नौजवान आगे बढ़े और बोले, इसको तो हम सीधा करेंगे, इसके हाथ पैर टांगे तोड़ देंगे, तभी ये रुकेगा। आदमी ने हाथ के इशारे से उन नौजवानों को रोक दिया और बोला, अभी तक मैं तेरी रायत कर चुका हूं, मगर लगता है तेरा कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने मजमे पे नजर डाली, कोई तो हो जो आगे आए और इस आदमी को रोके। ये तो अल्लाह के नबी यूनस हैं और ये सच्चे हैं, मगर कोई भी सामने नहीं आया। सब खामोश तमाशाई बने खड़े थे। ऐसे लगता था सब इस आदमी के हामी हैं। एक उधेड़ उम्र बुढ़िया आगे बढ़ी और बोली, इतने सालों से मैं तेरी जुनूनी बातें सुन रही हूं। हम तेरी बातों को नहीं मानते, हमें तूने अजाब के डरावे दिए, धमकियां दी, आज तक तो हमारे ऊपर कोई अजाब नहीं आया। हम तो अच्छे भले हैं, जा जाके कोई अजाब ले आ अगर तेरी कुछ चलती है। इस बुढ़िया के पीछे खड़े लंबे तड़ंगे मर्द जो शायद उसके बेटे थे गुस्से से बोले, हाँ जो करना है कर ले, हम नहीं रुकेंगे, हमें तेरी बातें समझ नहीं आती। मुझे लग रहा था कि इन सब को कोई भली बात समझ नहीं आने वाली। पैगंबर यूनुस बोले, मैं तुम्हें अल्लाह का डर दिलाता हूं, ये ना हो कि तुम पर अजाब टूट पड़े। एक आदमी मजमे में से चीख के गुस्से से बोला, हम पर अजाब क्या टूटेगा, पहले तो हम तुझे अजाब का मजा चखाएंगे। उसने दांत पीसते हुए कहा, निकल जा यहां से वरना तेरा हशर कर दूंगा। और ये आखिरी दफा कह रहा हूं, इसके बाद हम बोलेंगे नहीं, इसके बाद सिर्फ तेरी लाश तेरे घर वालों को मिलेगी। नौजवान नबी के चेहरे पे गुस्सा आ गया, वो बेबस थे, वो इन लोगों की खैरख्वाही चाहते थे। उन्होंने एक नजर मजमे पे डाली और इनसे कहा, सुनो मैं चला जाता हूं, मगर याद रखना इसके बाद तुम पर अल्लाह ताला का अजाब टूट पड़ेगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर देखी, घर घर जाके तुम्हें अल्लाह का पैगाम दिया, मगर तुमने मेरी बात पर कोई कान ना धरा। तुमने हमेशा मेरे पैगाम को मानने से इनकार किया। मैंने तुम्हें हर तरह से बुलाया, मोहब्बत से, अजाब के डरावे देकर, और तुम पर कुछ असर ना हुआ। अब इंतजार करो अल्लाह के अजाब का। इसके बाद वो दुख और गुस्से की मिली जुली कैफियत में वहां से पलटे, किसी ने भी उनको नहीं रोका, किसी ने भी उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। मजमा उनको तकता रहा और वो बोझिल कदमों के साथ उनको छोड़कर निकल खड़े हुए। वो बाहर आते हैं तो उनके चेहरे पे एक फिक्र है, परेशानी है, दर्द है। आखिर अपने लोगों को अजाब में कैसे देखें, कितनी बेबसी है इनकी। मैं उनके चेहरे पे देख रही थी, यूं लगता था वो टूट चुके हैं। उनको गुस्सा भी था मगर उनके हाथ में कुछ ना था। वो आहिस्ता आहिस्ता अकेले ही एक तरफ को चल दिए हैं। इस वक्त इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, एक तरफ अपने प्यारों के इनकार का दर्द, दूसरी तरफ उनके अजाब में मुब्तिला होने का रंज, और इतने सालों की मेहनत का बेसमर होना। उनके गम का अंदाजा कोई कर नहीं सकता। यूं लगता था उनको बहुत मोहब्बत है और बहुत खैरख्वाही है, मगर ये लोग हठधर्मी का शिकार है। इनकी अकड़ पर ये दुख करते हुए इनसे दूर जा रहे हैं। आज इनकी चाहत है कि वो इन लोगों को छोड़ जाएं और कभी पीछे मुड़ के ना देखें। पैगंबर यूनस थके हारे चलते जा रहे थे, वो जिस रास्ते पर जा रहे थे इसके आखिर में एक खूबसूरत बंदरगाह थी। कश्तियों की आमदोरफ्त थी, हर तरफ चहल पहल थी। एक बहरी जहाज पे सामान लोड हो रहा था, कुछ मजदूर सामान उठाए तेजी से अंदर बाहर जा रहे थे। लगता है ये जहाज तो बिल्कुल तैयार खड़ा है। कुछ मुसाफिर जहाज पर सवार होने के लिए सामान जल्दी जल्दी लेकर दौड़ते जा रहे थे। यूनुस थकावट से चूर हैं, इन्होंने बगैर किसी तवक्कुफ के इसी में बेहतरी जानी है शायद, कि इस जहाज पे सवार होके किसी और जमीन पे चले जाएं, किसी नई दुनिया में जहां शायद इनकी बात सुनने वाला कोई तो हो। इस बस्ती के लोगों ने तो इनको सख्त मायूस कर दिया था, अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही थी। इनके सवार होते ही कुछ देर में जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। यूनुस पैगंबर तख्ते पर खड़े अपनी बस्ती को हसरत से देखने लगे। पिछले कई सालों की यादें उनके जहन में घूम गई। क्या क्या नहीं किया उन्होंने इन लोगों के लिए, किस किस के तरीके से नहीं समझाया, कहाँ कहाँ जाके नसीहत नहीं की। मगर ये कौम समझने को कभी तैयार ना हुई। जैसे जैसे जहाज गहरे पानियों में जा रहा था, बस्ती के आसार दूर होते जा रहे थे, हत्ता कि वो एक धुंधला सा नुक्ता नजर आने लगी। जहाज अब दूर निकल चुका था। जहाज पे सवार मुसाफिर खूबसूरत और पुरसकून समंदर के मंजर से महजूज हो रहे थे। हर तरफ लहरें, पानी की लहरें जहाज से टकरा रही थीं। दूर दूर तक पानी था। शाम हो रही थी। कोई मुसाफिर आपस में खुशगपियों में मसरूफ थे, दूसरे अपने काम कर रहे थे, मगर कोई भी नहीं जानता था कि कुछ देर में कितना खौफनाक तूफान आने वाला है। अभी कुछ देर ही गुजरी होगी कि आसमान पर स्याह बादल छाने लगे और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। खूबसूरत शाम यूं लगता था अंधेरी रात में बदल गई है। बादल इतना गहरा था कि हर तरफ स्याही छा गई थी। वही समंदर जो अभी बड़ा खूबसूरत लग रहा था, अब बहुत हौलनाक नजर आने लगा। और इसकी मौजें ऐसी थीं कि जहाज से जोर जोर से टकराने लगी। मौजों में इतना जोर था कि जहाज अपना तवाजुन खोने लगा। कुछ ही देर में चीखों की आवाजें आने लगी। हर कोई किसी सहारे की तलाश में तेजी से आगे बढ़ने लगा। हवा इस कदर जोर की थी कि जो जहां खड़ा था खड़ा ना रह सका और गिर गया। समंदर बिफरा हुआ था जैसे सख्त गुस्से में हो। पैगंबर यूनुस मुश्किल से जहाज के तख्ते को थामे हुए अल्लाह ताला का जिक्र और दुआएं किए जा रहे थे। जहाज बुरी तरह हचकोले खा रहा था। यूं लगता था कागज की एक छोटी सी कश्ती है जो किसी भंवर में फंस गई हो। लोगों में अफरा तफरी और शोर मच चुका था। वही पुरसकून मंजर अब एक हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। बहरी जहाज के अमले में जो लोग शामिल थे, वो जहाज को बचाने की कोशिशों में लग गए। बहुत सारे मजबूत आदमी सामान के बड़े बड़े लोड्स समंदर में फेंकने लगे ताकि जहाज को कुछ हल्का कर सके। मगर खून खौर समंदर के सामने जैसे ये जहाज बेबस था। यूं लगता था अभी कोई मौज आएगी और जहाज को उल्टा कर सबको समुंदर में डुबो देगी। एक शख्स चिल्ला के बोला, यहां कौन है जो अपने मालिक को नाराज करके भागा हुआ है? आगे से कोई भी जवाब देने वाला ना था। वो फिर चीखा, कोई तो है, सामने आ जाए वरना हम सब डूब जाएंगे। मैं हैरान थी, इनका भी ये अकीदा है, इनको भी ये समझ है कि जब कोई अपने मालिक को नाराज करके निकलता है तो मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। मेरे जमाने में तो दिन रात नाफरमानियों के बावजूद कोई ऐसा सोचता तक नहीं। इतने में एक नौजवान की आवाज कहीं दूर से आई, कौन है वो, कौन है वो जिसने अपने मालिक को नाराज किया हुआ है, उसकी नहुसत सबको ले डूबेगी। मैं सोच रही थी काश मेरे लोगों को भी इस बात का यकीन हो जाए कि गुनाहों की नहुसत होती है और इस नहुसत की वजह से सब पर बलाएं आ जाती हैं। एक शख्स चीखता हुआ आगे आया और बोला, कोई सामने नहीं आता तो कुरा क्यों नहीं डाल लेते? ऐसे तो कोई भी सामने नहीं आएगा, जिसके नाम का कुरा निकलेगा उसी को समंदर में फेंक देना, इसी से हम बच सकेंगे। जल्दी से कुछ लोगों ने एक आदमी को दरख्वास्त की कि वो कुरा डालने के लिए मदद करे। उसने तमाम मुसाफिरों के नाम तेजी से लिखना शुरू कर दिए और कुरा डाला। सब मुसाफिर उसके गिर्द जमा हो गए, हर एक खौफजदा था, सबको अपनी जान का डर पड़ गया था। सब आंखें फाड़े दिल थामे ये मंजर देख रहे थे कि अब किसका नाम निकलता है। कुरा डालने वाले ने बुलंद आवाज से पुकारा, यूनस। मुसाफिरों की जान में जैसे जान आ गई। पैगंबर यूनस ने जब ये सुना तो आगे बढ़े, मुसाफिरों ने उनकी तरफ देखा और फिर कुरा डालने वाले की तरफ। ये कैसे हो सकता है? सबकी शक्लों पर एक कंफ्यूजन थी, गोया उनको यकीन नहीं आ रहा कि क्या हो गया और कैसे हो सकता है। वाकई पैगंबर यूनुस बहुत भले, नेक और बाकिरदार इंसान नजर आ रहे थे। इतने शरीफ इंसान का किसी भी गुनाह से क्या ताल्लुक? लोगों ने शोर मचा दिया, नहीं, दोबारा डालो, दोबारा डालो, ये नहीं हो सकता। कोरा डालने वाला भी जैसे पहले ही तैयार था। भला इतने शरीफ इंसान को कौन समुंदर में फेंक सकता है? ऐसे पाक इंसान को, ऐसे परहेजगार इंसान को। जब से ये जहाज में सवार हुए, लोगों ने इनकी जो सिफात देखी हैं, इससे उनको यकीन हो गया था कि ये आम लोगों की तरह नहीं है। जहाज फिर हचकोले खाने लगा। तूफान ऐसा था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। ये अजीब तूफान था, आम तूफानों जैसा नहीं था। इसमें एक वहशत थी, एक जोर था, जैसे कोई ताकत इसको पीछे से धकेल रही है। कुरा डालने वाले ने जल्दी से मुट्ठी घुमाई और फिर कुरा फेंका। इस दफा जब कुरा उठाया तो उसकी आंखें गोया खुली रह गई। मुश्किल से अल्फाज उसकी जुबान से अदा हुए, यूनुस। एक आदमी झट से बोला, अच्छा चलो एक आखिरी दफा डाल के देखो, वो ही हतमी होगा, इसके बाद और नहीं डालेंगे, बस एक दफा और डाल लो। यूं लगता था सभी को यूनुस अलैहिस्सलाम के किरदार और अखलाक का ऐसा यकीन है कि कोई मानने को तैयार नहीं कि ये कोई गलत काम कर सकते हैं। इतने में इतनी जोर की लहर जहाज से टकराई कि मुसाफिरों ने मुश्किल से खुद को थामा। वक्त ज्यादा नहीं था, जो फैसला करना था वो जल्दी करना पड़ेगा। कुरा डालने वाले ने जल्दी से आखिरी दफा कूड़ा डाला और जब इस दफा उठाया तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। मुसाफिर परेशानी में उसका चेहरा तक रहे थे। कुछ तो बोलो, हर तरफ से आवाजें आने लगी, किसका नाम आया है, किसका? यूं लगता था कूड़ा डालने वाला खुद उलझ के रह गया, ये नहीं हो सकता। फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, यूनुस, पैगंबर यूनुस, जैसे पहले ही समझ चुके थे कि वो ही हैं जिन्होंने अपने मालिक को नाराज कर दिया। ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको आजमा लिया। ये अल्लाह ताला की ताकत है जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही। लोग हक्का बक्का रह गए, अब क्या करें? पैगंबर यूनस आगे बढ़े और फरमाया, मैं ही वो गुलाम हूं जिसने अपने आका को नाराज किया, चलो मुझे समंदर में फेंक दो। लोग कभी पैगंबर यूनस को देखते और कभी बिफरे समंदर को, जिसमें कोई फर्क नहीं आ रहा था। वो कैसे ये काम करें? मगर उनके पास कोई चारा नहीं था। तूफान इस कदर तेज था, समंदर की लहरें ठाटे मार रही थी। एक तरफ समंदर का शोर, दूसरी तरफ सख्त अंधेरी रात। मेरा दिल कांप गया, है अब क्या होगा, ये कैसे हो सकता है? इतना खौफनाक समंदर, इसके अंदर इनको डाला जाएगा? मेरे सारे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मगर पैगंबर यूनस के चेहरे पर कोई फिक्र नहीं थी, कोई खौफ नहीं था, बल्कि यूं लगता था कि गम के बादल उनके चेहरे पर छा चुके हैं। इस कदर गमगीन लग रहे थे, खौफ से ज्यादा दुख था जो नुमाया था। यूं लगता था इनको कोई फर्क नहीं पड़ा खौफनाक समंदर से, ना इनको तूफान की कोई परवाह है। या अल्लाह, कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है इन हालात में? यूं लगता था अल्लाह ताला की नाराजगी के गम ने हर चीज का होश गुम कर दिया इनसे। लोगों ने हिचकिचाते हुए उनको उठाया और सख्त तूफानी समंदर में उनको डाल दिया। समंदर की मौजों में वो तिनके की तरह उलट पुलट हो रहे थे और पहाड़ जैसी मौजें आ रही थी और जा रही थी। कुछ लम्हों में ही वो पानी के अंदर ऐसे गुम हो गए जैसे कभी थे ही नहीं, और जहाज कहीं दूर रह गया। इस गहरे समंदर में कोई आसरा नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, सिवाय ऊपर एक अल्लाह की जात। कोई बचाने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं। बेबसी की इस हालत में यूनस तन्हा ही थे। यहां तक हम आज की इस सीरीज का पहला एपिसोड मुकम्मल करते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। उम्मीद है आपने इसको महसूस किया होगा। जब कहानी को ऊपर ऊपर से पढ़ा जाए तो उसमें और एक एक लम्हा उसको जीने में बहुत फर्क होता है। ये सिर्फ कह देना कि यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, कहानी खत्म। इसमें और वो जो उनके ऊपर हर लम्हे पे गुजरी है उसमें कितना बड़ा फर्क है, यही आपको दिखाना चाहती हूं। बहुत सारी सीखने की बातें इसमें हैं और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे हम आगे इसमें बढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम इसमें जो सीखने के पॉइंट्स हैं उन पे बात करेंगे।